हम सभी बाबा के बच्चे राजयोगी हैं और राजयोग का अर्थ ही हम बताते हैं संबंध जोड़ना। तो जीवन में हम संबंधों में तो रहते ही हैं, लेकिन क्या अंतर है इंसान के साथ संबंध और भगवान के साथ संबंध। भक्ति में भी हम पुकारते रहे भगवान को, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो कहते थे, लेकिन वो अनुभव नहीं था। लेकिन जब बाबा साकार में इस दुनिया में आते हैं, तब वो हमें अनुभव कराते हैं कि माता पिता के रूप में ईश्वर की पालना क्या होती है, शिक्षक के रूप में वो कैसे हमें पढ़ाते हैं, गुरु के रूप में वो कैसे हमारी सद्गति करते हैं, और खुद ऑफर करते हैं कि सर्व संबंध हम बाबा से अनुभव करें। तो जो संबंध हमारे दुनिया में हैं, उन संबंधों में भी स्नेह होता है, सहयोग होता है, प्राप्तियां होती हैं, तभी हम संबंधों में रहते हैं। जिन संबंधों में स्नेह सहयोग नहीं है, यानी सुख की बजाय हमें दुख मिलता है, ऐसे संबंधों को हम ज्यादा निभा नहीं सकते। थोड़े समय के बाद वो संबंध टूट जाते हैं, होता है ऐसा। ऐसे ही परमात्मा से जब हमारा संबंध होता है, तो उसका पहला आधार है स्नेह। जो ईश्वरीय स्नेह हमें अनुभव हुआ, जो रूहानी प्यार हमें मिला, उसने हमें बाबा का बनाया। और वो प्यार, जैसे कहा ना अभी हम गीत सुन रहे थे, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले स्वर्ग में ना सुख वो देने वाला है। तो वो जो स्नेह अनुभव हुआ, वो हमें कभी सांसारिक संबंधों में भी अनुभव नहीं हुआ। हालांकि बाबा तो हमें दिखाई नहीं देता है, निराकार है, अव्यक्त है, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त है। मैं नहीं समझती यहाँ साकार के समय के कोई बैठे होंगे, हैं कोई जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है? कोई भी नहीं है। तो हम सभी अव्यक्त रचना है, अव्यक्त बाबा के, मतलब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम सबका ये अलौकिक जन्म हुआ है। लेकिन तो भी वो प्यार जो है, वो जो संबंधों में हमें साक्षात अनुभव होता है, उससे कई गुना श्रेष्ठ निस्वार्थ प्यार है, जो ईश्वर का प्यार है और अलौकिक सुख, अतींद्रिय सुख देने वाला है। ऐसा अनुभव है, क्या कहेंगे जो समझते हैं कि हमें ऐसा अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबको नहीं होता है। जो समझते हैं हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, वो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, तो इसका मतलब कुछ लोग बीच में हैं और कुछ प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करते हैं, लेकिन होता है हम। और वो स्नेह जो है, उसने ही हमें पुरानी दुनिया से सहज त्याग करवाया। आज हमारा त्याग तपस्या का जीवन है, और जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो आश्चर्य खाते हैं, हाँ, कि ये इतना आज के समय में रहते हुए भी इतना त्याग कैसे कर सकते हैं। तो किसकी शक्ति है ये, कौन सा स्नेह है जिसने हमसे ये सब करवा लिया। जैसे कहते हैं ना, दुनिया में भी लोग स्नेह के लिए ही समर्पण कर देते हैं, दुनिया भी स्नेह भी जो है वो कुर्बानी करवा लेता है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं, दुनिया में भी कर लेते हैं लोग। तो ये तो भगवान का प्यार है, और जब वो हमें अनुभव होता है, तो ये बातें हमें कोई बड़ी नहीं लगती। उस स्नेह में वो त्याग करना, वो समर्पण करना सहज लगा या मुश्किल लगा? ओम मंडली की कहानियां सुनते हैं ना हम, जब आए तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको कुछ लगा ही नहीं, जैसे मक्खन से बाल निकल गया, क्योंकि भगवान के प्यार का अनुभव इतना तीव्र था कि उसके आगे ये दुनिया के विघ्न या दुनिया की जो भी विपत्तियां थी वो नहीं के बराबर लगी। तो परमात्मा प्यार हमें तब अनुभव होता है जब हम देह से न्यारे होते हैं। और आज की मुरली में भी ये बात बाबा ने कही कि जब तक हम आत्मा समझ करके परमात्मा को याद नहीं करते तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता। और दुनिया में ये कोई नहीं कह सकता कि आत्मा समझ करके मुझे याद करो, मुझ निराकार परमात्मा को याद करो, क्योंकि स्नेह में समानता चाहिए। जितना समान होंगे उतना समीप होंगे, समानता ही समीपता लाती है। और जितनी समीपता होगी उतना घनिष्ठ संबंध होगा। संबंध घनिष्ठ कब होते हैं? जब हम समीप होते हैं। और जो हमें सहयोग मिलता है बाबा से, जो भी हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, जो भी हमारे सामने विघ्न आते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया में समस्याएं नहीं आए ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन हम हिम्मत रखते हैं। बाबा की विधि है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा की हमें मदद तुरंत, बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ और बाबा हुजूर हाजिर हैं आपके लिए, तो वो भी हम अनुभव करते हैं। और हम सबके अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, हरेक की कहानियां हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से अनुभव हैं, तो हम कुछ एक दो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अभी जो निकट समय में, मैं ऐसे कहूंगी जो कोरोना का समय शुरू हुआ और उस समय हमें जो अनुभव हुआ बाबा का, और भी उसके भी पहले जो पिछले साल से तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो अनुभव हुआ है बहुत कुछ विशेष, जैसे मैं कहूंगी कि इस समय मैं समझती हूँ जनवरी से भारत में कोरोना शुरू हो गया था, पर बहुत नहीं था। और मार्च से जो है वो लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी ना, मार्च 23 मार्च के आसपास जो है वो। तो हम गए थे 10 मार्च को दुबई, और तभी ये चलता था, पर हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। ऐसे सुना है कि भाई ये वायरस आ रहा है चाइना से, तो जैसे और भी पहले भी वायरस निकले, कोई एक बार स्वाइन फ्लू फैला है ना, एक बार कोई इबोला वायरस फैला, तो सुनते हैं वो ठीक है वहां फैला है वहीं खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही हमने इसको हल्की रीति से ही लिया था कि ठीक है फैला है तो जैसे और वायरस खत्म हो गए ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा। तो था उस समय कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर जैसे बाबा से हम मन ही मन जैसे जब योग में सोचते हैं तो ऐसा लगा कि जा सकते हैं, जाना चाहिए, जैसे लगा कि बाबा का इशारा है कि जा सकते हैं। तो हम चले गए और वहां एक हफ्ते का कार्यक्रम था, एक हफ्ता रहे और 17 मार्च को वापस यहां पहुंचे। तो उस समय का अनुभव ये था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, हम वहां थे तभी से ये बात शुरू हो गई थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने वाले हैं, और हमारा जो रिटर्न टिकट था वो 17 का था। तो संकल्प हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि 17 को फ्लाइट ही बंद हो जाए, मना था कि 15 के बाद कभी भी बंद हो सकती है, और हमारा था 17 को। फिर जब हमने पता कराया तो पता चला कि 17 को हमारी शाम की फ्लाइट थी, तो जो 17 को फ्लाइट जाने वाली है वो शाम की फ्लाइट जो जाने वाली है वो लास्ट फ्लाइट होगी, उसके बाद फ्लाइट्स नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स दुबई से नहीं जाएंगे। तो देखिए बाबा ने कितना बिल्कुल एकदम, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि आप बच्चों की अगर लाइन क्लियर होगी तो जो फ्लाइट जाने वाली होगी लास्ट फ्लाइट उसमें आप चढ़ जाएंगे, फिर कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। और हमें बिल्कुल वो याद आया उस समय कि बिल्कुल वैसा ही हुआ कि हम चढ़ गए और फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट फ्लाइट नहीं गई। फिर यहां पहुंचे तो तब तक लॉकडाउन की कोई बात नहीं थी, 18 को यहाँ पहुंच गए, एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह सब थी, स्ट्रिक्ट था, और करीब एक हफ्ता हो भी गया यहाँ आए हुए, और अपने यहाँ बाबा का सीजन चल रहा था, लेकिन उस समय एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे पूरे देश में वो किया था ना 24 घंटे का, हाँ, जनता कर्फ्यू किया था, फिर उसके एक दिन के बाद उन्होंने पूरा ऐसे लॉकडाउन कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने सबको ट्रेस किया कौन कौन इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं, तो हमारा भी उसमें आ गया, जो सारी जांच होती है उसमें, तो गवर्नमेंट वाले आ गए 23 तारीख को कि आपको क्वारंटीन, मतलब 14 दिन के लिए आपको कमरे के अंदर ही रहना है, और वो दीवार पे वो क्या दरवाजे पे ठप्पा लगा देते हैं ना, वो पूरा लगा के चले गए। तब तक मतलब हमको बीमारी की सीरियसनेस का जरा भी मतलब अंदाजा नहीं था, और कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में, जैसे मैंने बताया कि हम ऐसे सोच रहे थे। फिर जब ये सब हुआ तो मुझे लगा कि इतना क्या सीरियस बात है जो ये इतना वो कर रहे हैं। फिर उसके बारे में थोड़ा सा न्यूज देखना शुरू किया, और क्या है ये बीमारी, कैसे फैल रही है इतनी फास्ट, और मेडिकल पर्सन है तो थोड़ा जल्दी सारी बातें समझ में आ जाती हैं, तो समझ में आया अच्छा ये तो मतलब जानलेवा बीमारी है, और इसीलिए जो सरकारें हैं वो इतना सब बंद कर रही है, क्यों देश बंद करेंगे लोग, कितना नुकसान है उससे देश को। तो फिर थोड़ा सा एक होता है ना, एक आ जाता है संकल्प कि अच्छा तो ये तो 8 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आते हैं, तो हमको आए हुए अभी एक हफ्ता हुआ है, तो हो सकता है 1-2 दिन में अगर होना कहीं लग गया होगा ट्रैवलिंग में। अब फ्लाइट तो फुल थी क्योंकि लास्ट फ्लाइट थी, तो बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी फ्लाइट, तो एक सीट भी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबा ने बिल्कुल सही सलामत, हमारे लिए तो वो लॉकडाउन और ही अच्छा है, हमारी तो भट्टी हो गई कमरे में बैठ के, इतना ज्यादा हम कोई परेशान नहीं हुए, लेकिन एक वो जो एक थॉट आ गया कि अच्छा ये ऐसी बीमारी है, ये तो हमको पता ही नहीं था, तो वो भी बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है बाबा जो भी है, अगर ऐसा कुछ है भी सही तो हम तो, हमको बाबा ने एवर रेडी बनाया है, बाबा को जो कराना है बाबा कराएगा, अगर अगर कुछ हुआ भी तो ऐसे नहीं संकल्प होकर के छोड़ा। तो मैंने देखा कि वो 14 दिन भी हमारे आराम से, मतलब और जो भी काम हमने सोचा हुआ था कि बिजी रहते हैं तो नहीं कर पाते थे, कुछ पढ़ने की चीजें थी बहुत समय से पेंडिंग था कि ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, किताब पढ़ी तो है लेकिन इंटरेस्ट भी है पर टाइम नहीं है तो कैसे पढ़ें, और भी कुछ क्लासेस की बात, कुछ और डीप स्टडी करना अपने बाबा की अव्यक्त मुरलियों का, ये सब इतना टाइम मिला शायद जिंदगी में पहली बार जब से समर्पित हुए पूरा टाइम अपना ही है, तो हमने तो रियली उस चीज का फिर आनंद लिया। तो कैसे बाबा हमें मदद करते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, वो हम अच्छी तरह अनुभव कर पाते हैं कि बाबा का ज्ञान ऐसा है कि हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकते, ज्ञान ही हमें जीवन मुक्ति देता है। वो हमें कहा ना, मात पिता है हमारा, शिक्षक है, गुरु है, तो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किसी ना किसी रूप में हमें मिलता रहता है और हम उससे सहज निकल जाते हैं। तो ऐसे तो अगर एक एक का अनुभव पूछने जाएं तो मैं समझती हूँ कि पूरी भागवत जो हम कहते हैं बनी हुई है वो उसी के आधार पर बनी हुई है, जो यादगार है भक्ति में वो भगवान के साथ के अनुभवों की ही तो यादगार है। तो बाबा हमारे मात पिता हैं, वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मिला करके, ब्रह्मा को माँ कहा, बड़ी माँ, वो हमारी बड़ी माँ है क्योंकि बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। भक्ति में या हम और धर्मों में देखते हैं, और धर्मों में भगवान को ज्यादातर पिता के रूप में मानते हैं, माँ का रूप इतना नहीं मानते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग गॉड फादर कहेंगे। और भी धर्मों में जैसे बौद्ध धर्म में भी माँ का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन केवल हिंदू धर्म में या जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म हम कहेंगे, तो हम परमात्मा को माँ के रूप में भी याद करते हैं। तो माँ बाप जो हैं वो बच्चे की हर बात की चिंता करते हैं, हर तरह से बच्चों को निश्चिंत रखने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा भी समझते हैं कि हमें चाहे जो भी त्याग करना पड़े लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा हो, ऊंचे से ऊंचा हो। ना आप सभी परिवार वाले हो तो आप सब अनुभवी हैं इस बात के कि माता पिता का बच्चों के प्रति किस तरह का नजरिया होता है। और हम देखते हैं बाबा भी बिल्कुल हमारी ऐसी ही पालना करते हैं कि हमें जो प्राप्तियां कराते हैं, जो बाबा का वर्षा हमें मिलता है, हम जन्म जन्मांतर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए वो प्राप्तियां, माना 21 जन्म तो गारंटी है बाबा की, उसके भी आगे बाबा हमें वो प्राप्तियां कराते हैं कि हमें सर्व भाग्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर माता पिता बच्चों को सुरक्षा भी देते हैं, सुरक्षा देते हैं यानी कोई भी विपत्ति आएगी, दुख आएगा तो माँ बाप किस बच्चे किसके पास जाते हैं, माँ बाप के पास ही जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जो है अगर उंगली पकड़कर चल रहा है माता पिता की, तो बहुत खुशी में नाचता गाता हुआ चलेगा, क्योंकि पता है जिम्मेवार कौन है, माँ बाप है। लेकिन अगर वो उंगली छूट गई तो फिर मूंझेगा, फिर घबराएगा, अभी मैं अकेला हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो यहां भी बाबा कहता है कि साथ और हाथ अगर बाबा का है सदा हमारा, हाथ कौन सा है बाबा का, श्रीमत का हाथ है, और बुद्धि रूपी साथ है, तो हम सदा निश्चिंत हैं, सुरक्षित हैं, मौज में हैं। और अगर वो साथ और हाथ छूट गया तो इस कलियुगी दुनिया में फिर हमारी हालत क्या होनी शुरू हो जाती है, फिर हम थोड़ा घबराने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो सदा बाबा का साथ और हाथ और उसकी छत्र छाया सदा हमारे ऊपर रहे, हमारे सिर पर उनका हाथ है। माता पिता के बच्चे जितना आज्ञाकारी होते हैं उतना वो दुआएं पाते हैं, और बाबा की आज्ञाएं जो श्रीमत है सुबह से लेकर अमृत वेले से रात तक, उस श्रीमत अनुसार हम जितना चलते हैं उतना बाबा की दुआएं यानी मात पिता की दुआएं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की दुआएं हमें मिलती रहती हैं, और वो दुआएं हमारे लिए जैसे वरदान हो जाते हैं, हमें सहज उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। तो बाबा के वो बच्चे तो इस प्रकार से चलते हैं, वो अनुभव करते हैं इसको कि हमें मेहनत ही नहीं लगती, बहुत सहज लगता है। दूसरे लोग देखेंगे, अज्ञानी लोग आपको देखेंगे तो उनको बड़ा मुश्किल लगेगा, ये कैसे उठते हैं 4 बजे, और आप 4 बजे नहीं उठेंगे तो क्या लगेगा, कि हमने बहुत बड़ी कमाई अपनी मिस कर दी, आज की हमारी वो कमाई चली गई, कितनी बड़ी प्राप्ति हमें भगवान से सुबह सुबह हमारा जो मिलन होता है वो कितना हमें भरपूर करने वाला होता है। तो हमारे लिए वो कितना महत्व रखता है कि हम मिस नहीं होने देना चाहते अपना अमृत वेला, और अगर मिस भी हो गया तो फिर हम दूसरे दिन के लिए अपने आप को पक्का करते हैं कि बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और फिर जो शिक्षक के रूप में बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बाबा ने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है, ये यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, सही कहेंगे, तो दुनिया में भी कोई ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले भी जो बहुत नामी ग्रामी होते हैं तो उनको बहुत नशा होता है कि हम फलानी फलानी यूनिवर्सिटी यानी जो विश्व प्रसिद्ध है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी दुनिया की जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उनकी बात कर रही हूं मैं, तो उन विद्यार्थियों को कितना नशा होता है कि इस पढ़ाई को पढ़ करके तो हम कितना ऊंच पद प्राप्त करेंगे, कितनी अच्छी पोस्ट हमें मिलेगी, आगे से हमें ऑफर मिलेंगे। तो हमारी यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटी से भी ऊंची और पढ़ाने वाला भी सबसे ऊंचा शिक्षक परम शिक्षक है जो हमें पढ़ाता है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, नंबर वन स्टूडेंट होते हैं, उनकी विशेषता क्या है? वो रेगुलर और पंचुअल होते हैं अपनी पढ़ाई में, कभी भी अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे वो। उनको पता है कि अगर हमने एक लेसन भी मिस कर दिया तो हमारे मार्क्स में अंतर आ जाएगा, यानी जो हम चाहते हैं अचीव करना वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी इस पढ़ाई में भी हमें क्या होना है? बिल्कुल रेगुलर और पंचुअल। आप सभी तो मैं समझती हूँ रेगुलर पंचुअल होंगे। पंचुअल का मतलब समझते हैं ना, कि किस कोई भी दिन हमारी मुरली मिस ना हो किसी भी कारण से। चलो अभी वर्तमान समय की परिस्थितियां तो थोड़ा अलग हैं, हम रोज सेंटर पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर पर भी हमारे पास सब साधन हैं। आज के समय में बाबा ने हमारे लिए सब पहले से प्रबंध कर दिए। जो साइंस के साधन भी निकले हैं वो किसके लिए निकले हैं? बाबा क्या कहता है, इतनी साइंस डेवलप किसके लिए हुई? बच्चों के लिए, कि बच्चे बहुत जल्दी उड़ती कला का पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट आ जाएं। तो फिर घर में रहते हुए हम मुरली सुने, पढ़ें, देखें, जो भी सब है, टीवी भी है तो आप व्हाट्सएप पर सुन भी सकते हो, इंटरनेट है, कोई भी साधन से आप मुरली पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। तो जो समझते हैं कि कभी भी किसी भी कारण से हमारी मुरली मिस नहीं होती, और फिर ऐसे नहीं कि काम करते हुए हम मुरली सुन रहे हैं, अब घर में है तो थोड़ा सा कई बार अलबेलापन भी आ जाता है कि मुरली भी चल रही है साथ साथ में, कुछ रसोई में काम चल रहा है तो वो भी देख लो, या कोई दूसरा इधर उधर कोई छोटा मोटा काम है साथ में वो भी निपटा लो, तो क्या होगा? एकाग्रता बनेगी। पहली बात तो माहौल खत्म। सेंटर पर हम जाते हैं उसका माहौल अपना होता है, वो माहौल जो वातावरण है पावरफुल, वो हमारी स्थिति को बनाता है और उससे हमारी एकाग्रता बनती है और मुरली की एक एक बात हमारे अंदर जाती है, जैसे वो समाती है। लेकिन अगर हम घर में हैं तो पहली बात तो माहौल हमें खुद बनाना है, बना बनाया माहौल हमें नहीं मिल रहा। फिर अगर हमने थोड़ा सा इधर उधर अपनी बुद्धि को भटकाया तो क्या होगा? जैसे सुनते हुए भी हम सुन रहे नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, सिर्फ नियम पालन कर रहे हैं। तो जो समझते हैं कि हम एक्यूरेट घर में रहते हुए भी जो परम शिक्षक हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा तो कभी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं पढ़ाई से, तो हम पढ़ते हैं, वो हाथ उठाओ विधि पूर्वक जो बताया सही विधि माना मुरली, माना मुरली, मुरली के अलावा और कुछ नहीं, तो उसमें भी कुछ भाई बहनों ने हाथ नहीं उठाया। तो जो समझते हैं कि इसमें हमें अलबेलापन आ जाता है वो नहीं आना चाहिए। मुरली को, मुरली की पढ़ाई हमारी विशेष पढ़ाई है, वो हमारी परमात्म पढ़ाई है। और भले ही कई बार हमें लगता है कि बाबा मुरली में कुछ बातें तो वही कहते हैं, रोज मुरली में होता है देही अभिमानी बनो, रोज होता है मुझे याद करो, लेकिन हम रोज भूल जाते हैं इसलिए बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं। जैसे भक्ति में लोग जो स्तुति करते हैं या आरती करते हैं वो वही तो होती हैं, लेकिन रोज वही आरती करते हैं, रोज वही स्तुति कर रहे हैं, रोज वही मंत्र जप रहे हैं, तो कहते हैं क्या कि हम रोज वही वही मंत्र जपते हैं? लेकिन वो भगवान को याद करने की विधि है। ऐसे ही मुरली माना शिक्षक से हमारा योग, जब बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई पढ़ते समय हमारा बुद्धि योग किसके साथ लगा होता है? चाहे भले वो रिवाइज हो रही है वो पढ़ाई, तो हमें कितनी बार, क्योंकि केवल हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, अब पढ़ाई भी तो दो तरह की होती ना, एक थ्योरी होती है एक प्रैक्टिकल होती है। तो थ्योरी पढ़ लिया उतना ही हमारे ज्ञान में काफी नहीं है, जैसे उस पढ़ाई में भी स्टूडेंट पेपर देकर फिर पास होते हैं, फिर क्लास आगे बढ़ती है, तो इस पढ़ाई में भी हमें प्रैक्टिकल पेपर देने हैं, तब जाकर के हमारी क्लास आगे होगी, हमारे अनुभव। यहाँ तो हमारे अनुभवी बनने की बात है, और तब हम उसमें कितना अचल अडोल रह करके उसको पास हो जाते हैं, तब हम पासविद ऑनर कहलाते हैं। बाबा हमें कहते हैं पासविद ऑनर की निशानी कि बहुत हिलाने वाली परिस्थिति आई जीवन में, लेकिन फिर भी हम अचल अडोल स्थिर रहे और उसे हमने सहज भाव से पार कर लिया। एक छोटी सी कहानी आती है पांडवों की और कौरवों की, जो द्रोणाचार्य थे वो उनके शिक्षक थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे, गुरु थे उनके। तो पहले दिन जब उनकी शिक्षा शुरू हुई कौरवों पांडवों की, तो उन्होंने पाठ पढ़ाया क्रोध मत करो, और फिर कहा दूसरे दिन सभी याद करके आना। तो दूसरे दिन पूछा उन्होंने द्रोणाचार्य ने, तो सभी ने सुना दिया पर युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा इतना सरल पाठ युधिष्ठिर तुमको याद क्यों नहीं हुआ, अच्छा कल जरूर याद करके आना। अब दूसरे दिन भी जब पूछा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु थोड़ा गुस्से में बोले इतना सरल पाठ याद करने में तुम्हें इतना समय लग रहा है। फिर युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा, कल जरूर याद करके आना, और अगर नहीं करके आए तो तुमको कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर अगला दिन हुआ और अब पूछा युधिष्ठिर को, तो कहा कि गुरुजी याद नहीं हुआ आज भी। तो एक थप्पड़ पड़ गया उसको। फिर उसने कहा अब मुझे याद हो गया। तो गुरु ने कहा थप्पड़ खा करके पाठ। तो बोला नहीं गुरुजी, मैं ये देख रहा था कि मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता। पहले दिन जब दुर्योधन ने मुझे कुछ ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मुझे याद नहीं हुआ वो पार्ट, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था क्योंकि आपने कहा क्रोध मत करो। और फिर मैंने दूसरे दिन भी प्रयास किया लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो गुस्सा आया, लेकिन अभी आपने जो थप्पड़ मारा मुझे उसके बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब अब मुझे पार्ट याद हो गया। तो ये तो कई बातें बहुत आसान हैं। हमारी जो पढ़ाई है उसमें थ्योरी आसान है, सच बोलो, गुस्सा मत करो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, पता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, बहुत सारी बातें, पवित्र बनो, योगी बनो, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन पुरुषार्थ क्या है? जीवन बनाने का है, और वो बनाने में हमें कितना समय लगता है। तो मानो बाबा भी तो हमें कहते हैं ना निर्विकारी बनना है, हमें पढ़ाई ही निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बनाने की है। लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो क्या हमने जीत लिया है? तब हम कहेंगे ना प्रैक्टिकल पढ़ाई हमारी, हमने दिया उसका प्रैक्टिकल। तो क्या हमने काम विकार को जीत लिया है? क्या हमने क्रोध को जीत लिया है? हाँ, कोई भी परिस्थिति में मुझे गुस्सा ना, गुस्सा दिलाने वाली परिस्थितियां तो बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा ना आए। क्या हमने लोभ को जीत लिया है? तब हम कहेंगे कि वो हमारी व्यवहारिक शिक्षा जो है वो बाबा को हमने उसका सबूत दिया। फिर बाबा गुरु के रूप में हमें रोज वरदान देते हैं। दुनिया में लोग गुरु करते हैं, कहते हैं गुरु का बहुत महत्व माना जाता है। तो गुरु क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु सदगति का मार्ग दिखाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। तो सब चाहते हैं कि ये जो हम धन कमाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, इसके साथ साथ हमारा आत्मनिर्वाह भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी थोड़ी आत्मा की उन्नति भी हो। तो गुरु से मंत्र लेते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कितने गुरु किए, 12 गुरु किए। तो जिनको भी थोड़ी वानप्रस्थ अवस्था होती है वो जरूर अपना कोई ना कोई गुरु ढूंढते हैं। और गुरु क्या चाहता है? गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव चाहिए, तभी गुरु जो है वो अपना मंत्र देता है। लोग नाम भी लेते हैं गुरु से, तो जो मंत्र देते हैं गुरु वो कहते हैं कि आप ये मंत्र किसी को मत कहना, ये मंत्र आपके लिए है और ये मंत्र अंदर ही अंदर चलता रहे। जैसे कहते हैं अजपा जाप, मतलब मंत्र चलते रहना चाहिए, या नाम दिया तो वो नाम चलते रहना चाहिए। तो यहां भी बाबा हमें मंत्र देते हैं मनमना भव मध्याची भव का मंत्र हमें मिला हुआ है, और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं निरंतर बुद्धि योग मेरे से लगा रहे। निरंतर वो मंत्र हमारा श्वासोश्वास हम स्मृति में रहें। लक्ष्य तो है, हम रह नहीं पाते। बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो, पर निरंतर नहीं बन पाते तो बाबा कहते हैं 8 घंटे ही सही, चलो 8 घंटे करो, 8 घंटे अपना शरीर निर्वाह करो। अच्छा 8 घंटे भी नहीं कर सकते हो तो 4 घंटे, और 4 घंटे भी नहीं करेंगे तो फिर हमने क्या कमाई की? वो हमारी योग की कमाई इतनी भी नहीं होगी कि हम अपने ब्राह्मण जीवन की भी सही तरह से पालना कर सके, माना बाबा की उन शक्तियों का और गुणों का हम अनुभव कर सके। फिर गुरु वरदान देता है, क्योंकि लोग गुरु के पास जाते हैं तो सोचते हैं आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद क्यों चाहते हैं? मेहनत नहीं करनी पड़े, गुरु ने कह दिया माना हो जाएगा। इतना विश्वास होता है कि गुरु ने कह दिया माना, गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया या मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि ये काम हो जाएगा, माना हो ही जाना है, इतना निश्चय होता है। तो या तो आयु का या कोई बीमारी है तो निरोगी होने का, जैसे कहते हैं आयुष्मान भव, निरोगी भव, सदा सुखी भव, या सौभाग्यवती भव, या किसी को बेटा नहीं है तो पुत्रवती भव, जो वरदान देते हैं इस तरह से, धनवान भव, जो भी। तो बाबा ने हमको ये सब वरदान दिए हुए हैं। बाबा का आयुष्मान भाव क्या है? इस ब्राह्मण जीवन में हम पूरी आयु तक या संगम युग जब तक है तब तक हम रहें। शरीर की आयु की बात नहीं है, ये कौन सी आयु है? कौन सी आयु? इस ब्राह्मण जीवन की आयु, मतलब बीच में कहीं बाबा कई बार मुरली में कहते हैं आश्चर्य व सुनंती कथंती और आगंती, वो वाली वो ना हो जाए तब हम कहेंगे कि वो ब्राह्मण जन्म की आयु कम हो गई। लेकिन अगर हम पूरा संगम युग हैं, जब तक ये संगम युग या जब तक हमारा जीवन है तब तक हम ब्राह्मण हैं, माना आयुष्मान। और साथ साथ में बाबा निरोगी भी बनाता है, यानी ऐसा कोई मन का रोग ना हो, सदा खुश मौज में रहें, ऐसे नहीं दिल शिकस्त रहें, निराश होते रहें, मूड ऑफ होता रहे, अशांत होते रहें, परेशान होते रहें, उसको कहेंगे कि हम रोगी हैं। पुत्रवान भव, तो बाबा तो हमें बेहद का मास्टर रचयिता बनाता है। परिवार में तो 1-2 बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होंगे। आजकल की जो फैमिलीज होती हैं, पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आजकल की फैमिलीज तो इतने ही होते हैं। लेकिन बाबा कहता है यहां वो 2-3 बच्चों की बात नहीं, लेकिन हम जिनको भी बाबा का बनाते हैं, जिनको भी हमने ये ब्राह्मण जन्म देने के निमित्त बने हैं, उनके हम मास्टर रचयिता हो गए। और वो कितनी आत्माएं हो सकती हैं? किसी के लिए वो 10 हो सकती हैं, किसी के लिए 20, किसी के लिए 50, किसी के लिए 1000, किसी के लिए और भी। ये निर्भर करता है, जैसे आज बाबा ने सेवा के लिए कहा ना, मुरली में सेवा के लिए कहा, कैसे सेवा करनी चाहिए बच्चों को। तो हम किस तरह से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं और कितनी आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाते हैं, उस हिसाब से हम बाबा के साथ साथ हम वो रचयिता है और हम मास्टर रचयिता बन जाते हैं। धनवान तो है ही है, सबसे बड़ा धन तो ज्ञान धन है। ज्ञान धन ही स्थूल धन को लाता है, जो प्रकृति को दासी बनाता है वो ज्ञान धन है। इस ज्ञान धन के कारण ही हम 21 जन्म तक पद्मा पदम पति बनते हैं। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर ज्ञान धन जो अभी वर्तमान में हमारे पास है, और बाबा के जो दूसरे सब खजाने हैं, गुणों का, शक्तियों का, संकल्पों का, वो सब खजाने भी हमारे जो हैं वो हमें अविनाशी धन से धनवान बनाते हैं, और जो पूरे कल्प में हमें सर्व भाग्य प्राप्त कराने वाले हैं। तो बाबा के वो वरदान भी हमें मिले हुए हैं, बस समय पर वो स्मृति हमें आनी चाहिए कि जिस समय जिस वरदान की आवश्यकता है वो स्मृति में आया तो समर्थी आ जाती है, स्मृति से समर्थी होती है। और जितना हम उस वरदान को यूज करते हैं जो बाबा के मिले हुए हैं, चाहे वो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा हमें कहता है, और भी जो हम विश्व कल्याणकारी हैं या पूर्वज आत्माएं हैं, विजयी रतन हैं या कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, और भी जो बाबा ने हमें जो स्वमान दिए हैं वो बाबा के हमारे लिए जैसे वरदान ही हैं, और जब हम यूज करते हैं उनको तो वो और उतना बढ़ते जाते हैं। इसकी विशेषता है कि जितना यूज करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, यूज करने से वो कम नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा का जो अपने गुरुओं के प्रति, लौकिक गुरुओं के प्रति भी, शिव बाबा के प्रति तो पूरा समर्पण था ही, पूरा फरमान बरदार। गुरु के प्रति हम फरमान बरदार होते हैं, माता पिता के प्रति आज्ञाकारी। फरमान माना गुरु ने कहा वो टल नहीं सकता, ऐसे बाबा के जीवन का एक मिसाल है जो हिस्ट्री में आता है कि उनके घर में पोते का जन्मदिन था और बहुत सारे मेहमानों को निमंत्रण दिया हुआ था, और गुरु का तार आया कि तुरंत 10,000 रुपया लेकर आ जाओ। तो यशोदा माता ने कहा कि इतने मेहमान आने वाले हैं, आपके बिना कैसे होगा, आज नहीं जाओ कल चले जाना। तो बाबा ने कहा नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है, ये जन्मदिन मेहमानों को तुम संभालो, मैं जा रहा हूं। गए वहां तो पता चला कोई खास बात नहीं थी, उनका जो दूसरा एक शिष्य था वो सट्टे में हार गया था 10,000 रुपए, उसको 10,000 रुपए देने थे, इसके लिए उन गुरु ने बुलाया। फिर उस गुरु के प्रति बाबा की भावना टूट गई और बाबा ने फिर वो गुरु छोड़ा और फिर दूसरा गुरु, ये मतलब उनके लौकिक जीवन की बात है जब शिव बाबा की प्रवेशता उनके तन में नहीं हुई थी। तो गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी, बाबा ने क्यों उनका तन लिया, ऐसी कई विशेषताएं बाबा के अंदर थी कि बाबा ने उनको अपना रथ चुना। तो दुनिया में कई बार ऐसे होता है, कई गुरु किए हुए होते हैं ना, ज्ञान में आने के पहले गुरु किया हुआ है मानो, तो पूछते हैं कि जो गुरु हमने किया हुआ है उसने हमें मंत्र भी दिया हुआ है या नाम भी दिया हुआ है, और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो क्या वो गुरु हमें श्राप नहीं दे देगा। कई बार के गुरु नाराज हो जाते हैं तो श्राप दे सकते हैं, कुछ हमारा बुरा तो नहीं हो जाएगा, जैसे एक संदेह होता है मन में। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, मुझे एक माता का मिसाल याद आता है कि वो साकार बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा के समय की बात है, तो उन्होंने गुरु किया हुआ था और उनके गुरु ने ऐसे बोला था कि अगर तुमने गुरु मंत्र छोड़ा तो तुमको कैंसर हो जाएगा। तो बाबा मिल गए, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिला तो उनको थोड़ा सा होता था, उलझन होती थी कि जब बाबा मुझे मिल गया तो फिर मैं ये मंत्र को क्यों जपती रहूं, लेकिन छोड़ने में भी डर लगता था कि गुरु ने कहा है कि अगर छोड़ दिया तो कैंसर हो जाएगा। तो फिर उसने सोचा मैं जब बाबा से मिलने जाऊंगी तो मैं डायरेक्ट बाबा से पूछूंगी, क्योंकि उस समय जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, ये 70s की बात है, तो बाबा पर्सनल मिलते थे, माना एक एक जना बाबा के सामने जाकर के बाबा से दृष्टि लेता था, वरदान लेता था, और अगर उनके मन में कोई बात है तो बाबा से बात भी कर सकते थे, पूछ सकते थे। तो उसने वो पूछा बाबा से कि बाबा ऐसे ऐसे मेरा गुरु जो था पहले वाला वो मुझे ऐसे कहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अगर तुम सोचोगी तो होगा, अगर तुम नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा बाबा ने मुझे कहा, उसके बाद मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, और आज कितने साल हो गए उस बात को, है ना, 50-60 साल हो गए, वो अभी भी हैं और फिर उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बात, कई बार जब मन में बिठा लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे संदेह अनुमान अपने मन में लाते हैं तो कहते हैं संकल्प से सृष्टि हो जाती है, जैसा सोचते हैं फिर वैसा हो जाता है। बाकी तो बाबा गुरुओं का भी गुरु है, वो परम सद्गुरु जब हमें मिल गया तो फिर उसके आगे ये जो हमारे लौकिक गुरु हैं उनकी शक्ति तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमारा साजन भी है, दोस्त भी है, बच्चे के रूप में सर्व संबंध बाबा निभा सकते हैं, माना ही इज ऑल इन वन। दुनिया में तो एक एक संबंध सब अलग अलग होता है, माता अलग होगी, पिता अलग होगा, गुरु अलग होगा, टीचर अलग होगा, भाई अलग, बहन अलग, दोस्त अलग। तो बाबा कहते कई बार दिल के टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे, बिखरी हुई थी दिल जो है, लेकिन बाबा ने सबको जोड़कर एक कर दिया कि सब संबंध एक में समा गए। और संबंध ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिए, वो संबंध भी हैं हमारे, लेकिन अब वो सेवा के संबंध हैं, उनके प्रति हमारा भाव और भावना बदल गई। जो हम समझते कि यही मेरे सब कुछ हैं, अब मेरा सब कुछ कौन है, उनके प्रति अब हमारा लेने का भाव नहीं है। क्योंकि दुनिया के जो भी संबंध है, जैसे हमने कहा है ना, स्वार्थ, बिना स्वार्थ के संबंध है ही नहीं। जो प्यार भी है वो भी स्वार्थ का प्यार है। जब तक आपका स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो प्यार रखेंगे, और जिस समय स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, कई बार वो ऐसा मुंह मोड़ेंगे कि वो जानते ही नहीं आपको कि आप कौन और मैं कौन। और आपको लगता है कि इतना किया मैंने इनके लिए और आज क्या मुझे मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ये कलयुग जो तमो प्रधान समय है, उसमें आत्माओं के अंदर ये कमी है, क्योंकि उनके अंदर खुद ही नहीं है, खुद ही प्यार नहीं है, खुद ही शांति नहीं है, खुद ही सुखी नहीं है, तो वो दूसरों को क्या देंगे। तो अभी हमें जो है वो सब कुछ बाबा से लेना है। बाबा से हम, वो प्यार का सागर है, बाबा ने हमें मास्टर प्यार का सागर बना दिया, वो सुखदाता है, उसने हमें सदा सुखी बना दिया, तो हम दे सकते हैं। तो और संबंधों को जो हम निभा रहे हैं, जो भी हमारे परिवार के हैं या मित्र हैं, उनके प्रति सेवा के भाव से, फिर वो कैसे भी हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारा भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छे के प्रति अच्छा और बुरे के प्रति बुरा, ऐसे कहेंगे, सबके प्रति मेरा कल्याण का भाव है। अच्छे के प्रति तो होता ही है, लेकिन खास जो हमारे प्रति कुछ ऐसे कहेंगे पेपर का रूप होते हैं, विघन का रूप होते हैं, उनके प्रति विशेष हमारा जो है वो ऐसा भाव होना चाहिए। तो जैसे बाबा हमारा दोस्त है, हम दिल की बातें अपने दोस्तों से करते हैं, तो फिर ऐसे नहीं कि ये तो हम साकार दुनिया में रहते हैं तो साकार दुनिया में तो कोई ना कोई हमारा होना ही चाहिए ना, क्योंकि बाबा तो निराकार है, बाबा को दिल की बात सुनाते हैं तो जवाब तो मिलता नहीं है, तुरंत तुरंत हमें जवाब चाहिए, तो कोई ना कोई दुनिया का दोस्त साथी तो होना ही चाहिए, क्या कहेंगे, होना चाहिए, होना चाहिए। बाबा की छुट्टी है नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने दिल की बात कहने के लिए किसी इंसान को अपना दिलदार बनाया, तो बाबा कहता है उस आत्मा के साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब बनता जाता है, क्योंकि आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ। अभी हमें कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्मातीत बनना है, हिसाब किताब हमें खत्म करने हैं, तो भगवान ही हमें कर्मातीत बनाता है। तो इसीलिए कोई भी मुसीबत के समय हमें कोई आत्मा याद नहीं आनी चाहिए, कौन याद आना चाहिए, बाबा। और वो हजार भुजाओं वाला है, वो अगर खुद नहीं, खुद निराकार है, पर वो किसी को निमित्त तो बना सकता है, हम सब अनुभवी हैं, बाबा कहाँ कहाँ से किसको निमित्त बनाकर हमारे काम करवा देता है हमें भी पता नहीं चलता है। लेकिन उतना निश्चय हमारा चाहिए, जितना निश्चय होगा हमारा उतना हम विजयी होंगे इसमें, और हम वो अनुभव करेंगे कि बाबा करता है, बाबा सदा ही हमारी मदद के लिए हाजिर है। साजन और सजनी के संबंध की बात, तो ये संबंध बहुत पर्सनल होता है और विशेष भी होता है, और इसमें को क्या चाहिए, वफादारी। इस संबंध में वफादारी, मतलब अगर लौकिक में भी है दुनिया में, तो भी पति पत्नी आपस में क्या सोचते हैं कि जो पत्नी है वो मेरे अलावा और किसी पुरुष की तरफ नजर भी न डाले, या पत्नी सोचेगी कि जो पति है उसकी मेरे सिवाय किसी और स्त्री की तरफ बुद्धि भी न जाए, इसको इसको वफादारी कहते हैं। इसे पति व्रता या पत्नी व्रता ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। और अगर गई तो उस संबंध में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो संबंध टूट भी जाता है। आज तलाक के केसेस होते हैं उसमें बहुत कारण तो यही होते हैं। बाबा को भी इस संबंध में वफादारी चाहिए। बाबा भी क्या कहता है, एक बाप दूसरा ना कोई, या बाबा ही मेरा संसार है, यानी तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग प्रीत निभाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही को मन का मीत बनाऊं। तो बाबा को भी यही पसंद है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो जो लवर्स होते हैं वो बहुत जेलस होते हैं, माना किसी दूसरे की दृष्टि वो देख नहीं सकते, तो ऐसे ही बाबा को भी इस संबंध में पूरी वफादारी चाहिए। अब भाई कहेंगे क्या वो हमारा भी साजन है, क्या कहेंगे, है या नहीं है, क्योंकि आत्मा सजनी के रूप में है या आत्मा सीता के रूप में है। आत्मा रूपी हम सब सीताएं हैं, चाहे ये चोला पुरुष का है या स्त्री का है। आत्मा का तो कोई स्त्री पुरुष होता नहीं ना, आत्मा तो उससे ऊपर है। बाबा तो कहते हैं आत्मा पुरुष है, चाहे वो स्त्री की आत्मा है चाहे वो, इसलिए आत्मा रूप में हम सब कौन है, भाई भाई है। ऐसे कहते हैं ना, हम आत्मा रूप में सब भाई भाई है। तो इस रूप में बाबा हम सबका साजन है और वो एक साथ सभी के साथ संबंध निभा सकता है। ऐसे नहीं कि एक के साथ संबंध निभाने में बिजी है तो मेरे पास, मेरे लिए बाबा के पास टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो उनकी शक्ति बेहद की है, असीम है। हाँ, बाबा की उस हमारी इस छोटी बुद्धि से हम बाबा की उसको समझ नहीं सकते, मतलब विशालता को, या हम कहें वो सही शब्द भी हमारे पास नहीं है कि बाबा का कार्य कैसे चलता है। बाबा नहीं कहते कई बार वतन में मेरे पास टीवी है और एक सेकंड में मैं सब बच्चों का चार्ट देख सकता हूं, मुझे टाइम नहीं लगता है। आपके जो साधन है उसकी तो फिर भी सीमा है, उसकी हद है, लेकिन बाबा का सब कुछ तो बहुत बेहद का है। और ऐसे ही बाबा बच्चा भी है, हम सबको बाबा को वारिस भी बनाना है। मानो दो बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा कौन हो गया, बाबा। तो जो दो बच्चों के लिए आप करते हो उतना ही आप बाबा के लिए भी करो। फिर देखो आप बाबा के लिए जो करते हो वो जैसे बच्चे गर्व से, अगर सपूत बच्चे होते हैं तो गर्व से माँ बाप का सिर ऊंचा करते हैं ना, कहते हैं कुल का नाम रोशन करते हैं, तो वो बाबा कितना आपका सिर ऊंचा करता है, कितना आपका रोशन करता है। और फिर जो आपने उसको वारिस बनाया 21 जन्मों तक, वो हमें वारिस बना देता है, हमें राज्य अधिकारी बना देता है। और ऐसे नहीं कि इस जन्म में जो हम करते हैं उसका हमें नहीं मिलता, इस जन्म में भी महसूस करते हैं बाबा के बच्चे की भगवान ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, हम कहां थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया, करते हैं महसूस नहीं करते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाएं, देखो कितने हैं। तो फिर इस जन्म में ही फल, प्रत्यक्ष फल भी देता है, भविष्य फल तो है ही है, ऐसे नहीं कि प्रत्यक्ष फल हमें नहीं मिलता है। तो जितना हम सर्व संबंध बाबा से निभाएंगे उतना हम सहज निरंतर योगी बनते जाएंगे, क्योंकि सारे दिन हम संबंधों में ही रहते हैं। संबंधों की प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, बिना संबंध के तो मनुष्य रहता ही नहीं है। कभी माता पिता होंगे, कभी दोस्त होंगे, कभी साजन होंगे, कभी बच्चे होंगे, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है। अमृत वेले जैसे माता पिता के रूप में हम बहुत अच्छा बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। फिर मुरली है तब तो शिक्षक है ही बाबा। फिर जब हम मुरली का रिविजन करते हैं, मनन करते हैं, या दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं वो शिक्षक के रूप में, गुरु रूप में बाबा के वरदानों को जब हम याद करते हैं, जो समान हमें बाबा ने दिए उनको जब हम स्मृति में लाते हैं, वो गुरु रूप में बाबा हमारे सामने, दोस्त के रूप में साथी है, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें बाबा को हम साथी बनाएं, करण करावन हार बाबा है, बाबा करा रहा है, ऐसा समर्थ साथी मेरे साथ है, तो काम करने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी और कार्य में मिलने वाली सफलता वो भी दुगनी हो जाएगी। कम समय में डबल काम हम कर पाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि हम तो डबल व्यस्त हो जाते हैं। बाबा के बनने के बाद जो पहले कार्य करते थे उसके अलावा अब हम जो समय देते हैं वो ज्ञान योग सेवा में भी समय देते हैं। तो हमारा समय जो 24 घंटे हैं हमारे लिए, हम कहेंगे ना कि अब हम डबल व्यस्त हो गए, लेकिन वो होते हुए भी हमारे कार्य करने की शक्ति और क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हमें महसूस ही नहीं होता। वही काम हम आधे समय में पूरा कर लेते हैं। फिर रात को जब हम सोते हैं तो सोने से पहले भी बाबा की याद में, याद बाबा की याद की गोदी में बाबा कहता है सो जाना है। ऐसे कहते हैं आराम, आराम में दो शब्द हैं आराम, तो बाबा कहते हैं जब आराम बोलोगे तो मन को बिल्कुल आराम आ जाएगा और बहुत गहरी नींद, वो भी योग निद्रा होगी। बाबा की याद में जब सोएंगे तो वो योग निद्रा हो जाएगी, तो उसमें भी कमाई है। तो जो संबंध निभाने की प्रवृत्ति है वो नींद में भी चलती है। मम्मा बाबा की जो मुख्य कमाई थी वो नींद की कमाई ज्यादा थी, कि नींद भी बाबा की याद में सदा इतना अटेंशन रहा। इसीलिए बाबा चार्ट देने के लिए बोलते हैं कि सोने से पहले अपने मन बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ कर दो। चार्ट बाबा को दिया तो हमने सारा जो अपना दिन का हिसाब है उसे क्लियर कर दिया, बाबा को दे दिया, सौंप दिया वो, और फिर बाबा की याद में सो गए। तो इस तरह से निरंतर योगी बनेंगे और फिर कोई भी माया का रूप सामने आएगा उस पर सहज विजय हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, संबंध में स्नेह है और जितना मोहब्बत है बाबा से वो मेहनत समाप्त कर देता है। नष्ट मोह सहज हो जाएंगे और जो भी दुनिया में हमारे जिसको कहते हैं मोह माया है, उससे बुद्धि निकलकर किस में आ गई, बाबा में आ गई, क्योंकि प्राप्तियों का अनुभव है तो फिर दूसरी तरफ बुद्धि जाएगी नहीं। अगर कोई संबंध की कमी है, अगर बाबा से हम कोई संबंध अनुभव नहीं कर पाते तो उस संबंध में दूसरा संबंध खींच लेगा, फिर बुद्धि जो है वो उस तरफ अगर जाती है तो उसको बाबा लीकेज कहता है, संपूर्णता नहीं हुई ना उसमें, सर्व नहीं है तो संपूर्णता नहीं है, तो फिर लीकेज होती है, और लीकेज है तो वो पावर नहीं भरती, फिर वो अतीन्द्रिय सुख जो ईश्वरीय सुख का अनुभव होना चाहिए उसमें फिर कमी महसूस होती है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि माता पिता का संबंध अनुभव करना तो हमारे लिए सहज है, वो तो हमें हो जाता है, शिक्षक का भी हो जाता है, लेकिन दोस्त के संबंध में या फिर थोड़ा बहुत किसी के लगाव में आ जाते हैं उस संबंध में थोड़ा बुद्धि चली जाती है, तो उतना भी हमारा अपने ऊपर चेकिंग चाहिए कि सूक्ष्म में भी किसी संबंध में हमारी बुद्धि ना जाए। बाकी जो संबंध है वो सिर्फ सेवा के संबंध से है, तो जितना सर्व संबंध बाबा से है उतना आत्मा सदा ही संतुष्ट प्रसन्न शक्तिशाली सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करेगी, वर्तमान में भी अनुभव करेगी और भविष्य की प्राप्ति तो है ही है। ओम शांति।